بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ठीक है भाई। देखो, बात चल रही थी बदनजरी का इलाज, मजलिस नंबर 5। तो बदनजरी ये जो है, ये एक बातिनी बीमारी है, उससे गुना यानी हमारी जो नेकिया है वो सब खत्म हो जाती है, उस पर बात चल रही थी। फिर बताया था कि इसको छोड़ने के लिए थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन जब आदत हो जाती है फिर वो तकलीफ हमारे लिए आसान हो जाती है। जी, तो उस पर बात चल रही थी, तो उस पर एक मिसाल बता रहे हैं कि अरबों का कहवा, कि अरबों के यहाँ कहवा का बड़ा रिवाज है, यहाँ पर भी है, मुंबासा में भी सही लोग पीते हैं कहवा। जब हजरत फरमाते, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, जब मैं छोटा था और दारुलूम नानक में वाड़ा में कुदूरी काफिया वगैरह पढ़ता था, उस जमाने में कतर के एक शेख कराची आ गए। उनसे मुलाकात के लिए तलबा का एक वफ्द जा रहा था, तलबा के लिए यानी एक जमात, एक ग्रुप जा रहा था। मैं भी उनके साथ चला गया। किसे? कतर का एक शेख आया था, वो अरब था, उससे मुलाकात के लिए जा रहे, तो उनके साथ चला गया। जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कहवा के जरिए हमारी खातिर तवाजु की। जब अरब से मिलने के लिए गए तो वहां पर हमारे लिए जो लाया गया तो क्या था? कहवा था। उससे पहले कहवा न कभी पिया था और न चखा था, चुनाचे छोटे छोटे प्यालियों में जरा जरा सा कहवा सबके सामने लाकर रखा गया। जी, सबके सामने लाकर रखा गया। हम अपने दिल में सोचे बैठे थे कि कहवा बड़ा मीठा और लजीज होगा, हम तो ये सोच रहे थे, लेकिन जब उसको मुंह से लगा लिया तो इतना कड़वा था कि उसको हलक से उतारना मुश्किल हो गया। मुझे याद है कि उस वक्त मेरे सर में दर्द हो गया उसको पीते ही, और समझ में नहीं आ रहा था कि इस एक घूंट को किस तरह उगले या किस तरह उसको निगले, यानी उगले यानी निकाले, या फिर उसको पी जावे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोचने लगा कि अल्लाह, ये अरब लोग तो ये कहवा हर वक्त पीते रहते हैं और हमारे तो हलक से भी नहीं उतर रहा है। बहरहाल आप लोगों भी जरा कहवे का थोड़ा टेस्ट करके देख लो, नाम तो सुना होगा लेकिन शायद पिया नहीं होगा, तो जरा पी लो, मैं तो पीता रहता हूं। बहरहाल पहली मरतबा उस वक्त कहवा पिया, फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता अरबों के साथ उठना बैठना शुरू हुआ तो वहां ये कहवा हर वक्त चलता ही था। हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके पीना शुरू किया, यहां तक कि अब वो इतना लजीज मालूम होता है कि उसके सारी कड़वाहट और तलखी जाती रही और उसके पीने में मजा आने लगा। तो देखा, तो अब ये था कि शुरू में मुजाहदा हुआ लेकिन बाद में अब उसी कहवे में, उस कड़वाहट में, किसी को और को पिलाओ नए आदमी को तो बोले यार तुम लोग कैसे पीते हो, और हमें तो बोले न मिले तो मजा नहीं आता। तो वो मुजाहदा बताना होता है कि देखो शुरू में ऐसा होता है, बाद में फिर सही हो जाता है। अब दूसरी मिसाल बता रहे, जैतून की कड़वाहट। जैतून भी आपने खाया होगा। 1963 में जब मैं होश के आलम में पहली बार, यानी अपने जब बलागत के बाद के पहली बार सऊदी अरब गया, जद्दा में एक बार एक बाजार में जाना हुआ, वहां देखा कि एक दुकान में थाल के अंदर एक प्लेट में बड़े तो जैतून रखे हुए हैं और उन जैतून से तेल भी रस रहा था। जैतून का नाम कुरान करीम में पढ़ा था, ये थे नौजवान, अभी अभी तो बड़े हुए थे, और बोले जैतून का नाम कुरान में पढ़ा था लेकिन कभी जैतून को न तो देखा था, न खाया था, न चखा था। जैतून को न कभी देखा था, न खाया था, न चखा था, अलबत्ता उसकी तारीफ सुनी थी कि जैतून बड़ा लजीज होता है। अब दिमाग में ये बात थी कि ये जैतून मीठा होगा, देखने में भी ऐसा लगता था कि जैतून मीठा होगा। चुनाचे जैतून खरीदा और मीठा समझकर मुंह में रखा, लेकिन जैसे ही मुंह में रखा तो कड़वा होने की वजह से उसको निकालना मुश्किल हो गया, निकलना। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उसको खाते खाते आदत हो गई और अब वो इतना लजीज मालूम होने लगा कि कोई हद्दो हिसाब नहीं। तो बहरहाल ये कहना कि फुला आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में वो हमारे इख्तियार से बाहर है, दरअसल वो हमारे इख्तियार से इख्तियार में है, इसलिए कि हमने खुद अपने अमल से उसकी आदत डाल दी है। अब उसकी आदत छुड़ा दो, और अब उस आदत पड़ने के नतीजे में ऐसा महसूस होने लगा कि उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब तुम एक मर्तबा छोड़ने का इरादा कर लोगे और अज्म व हिम्मत कर लोगे तो वो आदत इस तरह छूट जाएगी कि फिर याद भी नहीं आएगा कि हम कभी ये काम करते भी थे, याद भी नहीं आएगा, ऐसा छूट जाए। इसलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मत समझो इस काम को छोड़ना गैर इख्तियारी है, बल्कि इख्तियारी है, अलबत्ता सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत को इस्तेमाल करके पुख्ता इरादा कर लो कि मुझे ये चीज छोड़नी, चाहे उसके नतीजे में मेरे दिल पर आरे चल जाए, चाहे मेरे ऊपर पहाड़ टूट जाए, लेकिन मैं इस काम को छोड़ूंगा, लेकिन मैं इस काम को छोड़ूंगा। जी, विल पावर, जी, तो लेकिन मैं इस काम को छोड़ूंगा। इस तरह करने से चंद रोज तकलीफ होगी, वक्त दिक्कत होगी, फिर रफ्ता रफ्ता आदत खत्म हो जाए, इसके बाद फिर कभी इस काम का दिल तकाजा भी होगा तो उस वक्त बचना दुश्वार नहीं होगा, बल्कि फिर इस काम से बचने में ऐसी लज्जत और फरहत हासिल होगी कि इसके मुकाबले में इस काम के करने की लज्जत और फरहत बेकार हो जाए। अभी तक करने की लज्जत थी, फिर जब छोड़ने की यानी गुनाहों के छोड़ने के बाद जो लज्जत मिलती है, ओ हो, फिर उसके बाद उसको गुनाह करने का वो मजा और वो लज्जत नहीं मिलती, क्योंकि उसने छोड़ने का लज्जत देखी ही नहीं, इसलिए छोड़ नहीं रहा। अब उसकी मिसाल दे रहे हैं कि जैसे किसी को खारिश, खारिश होती है ना, खुजली, खुजली, खुजली को इंग्लिश में क्या कहेंगे, खुजाने की लज्जत, उसमें मजा आता है ना, थोड़ा खुजाने में बहुत मजा आता है, जिसको खुजली होती है उसको पूछो, स्क्रैच। तो जी, हजरत वाला ने उसकी एक खूबसूरत मिसाल दी है, जैसे एक आदमी के जिस्म पर खारिश हो रही हो तो उसको खुजाने में बड़ा मजा आता है, एक बीमारी होती है ना खारिश, तो उस वक्त उसको खुजली ज्यादा आती है, तो उसको खुजाने में बड़ा मजा आता है। चुनांचे ये मकोला मशहूर है कि दुनिया में दो कामों में मजा है, एक खाज में, एक राज में, एक खाज यानी खुजलाने में और एक राज यानी हुकूमत करने में, यानी एक खुजाने में दूसरा हुकूमत करने में, बड़ा मजा है। बहरहाल खुजलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उस खुजलाने का अंजाम यह है कि जो जितना खुजाएगा उतना ही वो जख्मी होगा। जी, वो जितना खुजाएगा उतना ही वो जख्मी होगा। देखा, उसको खुजाते वक्त तो पता नहीं चलता, जब खुजाने के बाद बैठेगा तो हो, इतना जख्मी हो चुका होता है, वो जख्मी होगा और खारिश और ज्यादा बढ़ेगी, इतनी ही बीमारी बढ़ेगी। अब डॉक्टर उसे कह रहा है कि अपने जिस्म को मत खुजाओ, उससे तुम्हारी बीमारी और ज्यादा होगी, वो कहता है कि रोकना ये मेरे इख्तियार से बाहर है। क्यों कहता है, अगर डॉक्टर के बोले मैं रोक नहीं सकता, डॉक्टर कहता है देखो तुम्हारी सेहत इस पर मौकूफ है, यानी तुम्हारी सेहत और बिगड़ी कि खुजाल मत करो। अब वो बीमार डॉक्टर के कहने पर अगर वो खुजाने को रुकता रोकता है, लेकिन रोकने में उसको बड़ी तकलीफ होती है, मशक्कत और दिक्कत हो रही है, खुजली उठ रही है, तबीयत खुजाने को चाह रही है, मगर उसने जबरदस्ती अपने आप को रोक लिया। अब शुरू में उसको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जब वो मुसलसल रुकता रहा तो रफ्ता रफ्ता उसको आदत हो गई, आदत हो गई, अब खारिश से रुकने में दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही, अब नहीं हो रही, यहां तक कि जब न खुजाने के नतीजे में अब बीमारी दूर हो गई और खारिश खत्म हो गई तो अब सेहत हासिल हो गई, और सेहत की लज्जत उस खारिश करने की लज्जत के सामने कुछ भी नहीं। उसमें जो मजा था, लेकिन जो सेहत के बाद जो मजा आया, अब उसका मजा खत्म हो गया, उसकी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि खुजाने में जो लज्जत आ रही थी वो झूठी लज्जत और झूठा मजा था। अब सेहत की जो लज्जत और फरहत हासिल हो रही है, ये हकीकी लज्जत और हकीकी मजा है जी। तो इसी तरीके से बदनिगाही की लज्जत छोड़ दो, बदनिगाही की लज्जत छोड़ दो। इसी तरह बदनिगाही के नतीजे में जो लज्जत हासिल हो रही है वो खारिश वाली लज्जत है, खारिश वाली लज्जत, खुजाने वाली लज्जत। उसको छोड़ने से तकलीफ जरूर होगी, लेकिन एक मरतबा तकलीफ उठाने के बाद जब इंसान छोड़ने का आदी हो जाएगा और उसकी निगाह पाकीजा हो जाएगी और उसको इफ्फत और इस्मत हासिल हो जाएगी, यानी पाक दामनी हासिल हो जाएगी और तकवा की लज्जत हासिल होगी, तो उसके आगे गुनाहों की लज्जत हेच हो जाएगी, बेकार हो जाएगी जी। उनकी कोई हकीकत नहीं, यानी एक आंखें झुकाने की भी एक लज्जत है और एक आंखें उठाने की लज्जत है। जब आंखें झुकाने की लज्जत मिल जाएगी, उसके बाद उठाने में उसको मजा ही नहीं आएगा। वो सोचेगा जो लोग आंखें उठाते हैं पता नहीं उसको क्यों मजा कैसे आता, मेरे को तो एक परेशान होगा ये। आज हमने आंखें झुकाने की लज्जत नहीं चखी है जी। उनकी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि गुनाह से बचने में एक तरफ सेहत की लज्जत है, गुनाह से बचने में एक तरफ सेहत की लज्जत है और दूसरी तरफ गुनाह से बचने में इस तसव्वुर की लज्जत है, और दूसरी तरफ उस गुनाह से बचने में उस तसव्वुर की, गुनाह से बचने तसव्वुर की लज्जत कि मैंने अपनी एक बड़ी ख्वाहिश को अपने महबूब हकीकी के लिए कुर्बान कर दिया। एक बड़ी ख्वाहिश यानी अपने नफ्स की ख्वाहिश थी, मैंने अपने महबूब हकीकी के लिए यानी अल्लाह के लिए मैंने कुर्बान कर दिया। जब किसी से हकीकी मोहब्बत होती है तो उसके आगे अपनी ख्वाहिशात को कुचलने में बड़ी लज्जत हासिल होती है, क्योंकि उस वक्त तसव्वुर करता है क्या, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। एक और जगह पर हजरत वाला फरमाते कि ऐसे मौका पर इंसान दो काम करे, एक ये कि अपनी हिम्मत को इस्तेमाल करके चल खड़ा हो, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला से इस हिम्मत के अंदर कुव्वत अता होने की दुआ करे। एक तो इस्तेमाल करे हिम्मत को और दूसरा अल्लाह ताला से इस हिम्मत के अंदर ताकत आने की दुआ करे कि अल्लाह मेरी हिम्मत कमजोर है, मैं अपनी तरफ से इरादा करता हूं गुनाहों के छोड़ने का कि अभी ये निगाह गलत जगह नहीं उठेगी, लेकिन या अल्लाह मैं क्या और मेरा इरादा क्या, मेरी हिम्मत क्या, मेरा अज्म क्या। ये अल्लाह हिम्मत भी आपके कब्जे कुदरत में है, इरादे भी आपके कब्जे कुदरत में है, ये अल्लाह अपनी रहमत से मेरी हिम्मत में कुव्वत अता फरमा दीजिए और इस अज्म पर मुझे साबित कदम अता फरमा दीजिए, ये अल्लाह मुझसे इस शर को दूर फरमा दीजिए, ये दुआ करे। जब इंसान ये दुआ करता है तो फिर अल्लाह ताला हिम्मत और कुव्वत अता फरमा देते हैं और इंसान को उस गुनाह से नजात मिल जाती है। हदीस शरीफ में है, जो इफ्फत हासिल करना चाहता है यानी पाक दामन हासिल करना चाहता है, दुआ क्या है कि अल्लाह हिम्मत भी आपके कब्जे कुदरत में है और इरादे भी आपके कब्जे कुदरत में है, ये अल्लाह अपनी रहमत से मेरी हिम्मत में कुव्वत अता फरमा दीजिए और उस इरादे पर मुझे साबित कदम फरमा दीजिए, ये अल्लाह मुझसे इस शर को दूर फरमा दीजिए, ये दुआ करें। ठीक है, तो जो अफ्फत हासिल करना चाहे, हदीस में आता है कि जो इंसान पाक दामनी हासिल करना चाहे तो अल्लाह ताला उसको अफीफ पाक दामन बना देते, ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला हम सबको गुनाह से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हिम्मत में कुव्वत पैदा करने का तरीका, अब हिम्मत में भी ताकत पैदा करना है, उसमें ताकत पैदा करने का तरीका क्या है। एक साहब ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा, ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है, हुजूर की तंबी से मालूम हुआ कि बदनजरी फैले इख्तियारी है और इलाज इस्तेमाले इख्तियार है, मगर बावजूद उसके फिर भी इख्तियार के इस्तेमाल की हिम्मत नहीं होती और गुनाह हो जाता है, हिम्मत में कुव्वत नहीं। ये था। अब इसकी वजाहत सुनो, ये वही बात है कि जिसमें किसी न किसी गुनाह के सिलसिले में आज 99% अफराद मुबतला, यानी कि किसी न इस वक्त जिसमें किसी न किसी गुनाह के सिलसिले में आज 99% लोग इस गुनाहों में मुबतला है, अलग अलग 99%। मालूम है कि ये चीज इख्तियार में है, उसके बावजूद उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं होती और हिम्मत में कुव्वत नहीं। जैसे गालिब का शेर है, जानता हूं सवाबे ताअत तो जहत, जानता हूं सवाबे ताअत तो जहत पर तबीयत उधर नहीं आती। जानता हूं मतलब यह है कि इल्मी और अकली तौर पर मालूम है कि रास्ता अच्छा है। इससे पहले मैंने बताया था, इल्म है लेकिन अमल नहीं हो रहा, इल्म है अमल नहीं हो रहा। ये जानते हैं कि गुना इतना है, इतना खतरनाक ये है, लेकिन अमल नहीं, यानी अमल की हिम्मत नहीं है। तो और ये रास्ता बुरा है, एतिकाद भी है, लेकिन तबीयत उस तरफ रागिब नहीं होती, उसका क्या इलाज? तो जवाब में हजरत वाला फरमाते हैं, कुव्वत भी इस्तेमाल ही से पैदा होगी। तो फरमाया, कुव्वत बैठे बैठे नहीं होगी, इस्तेमाल करोगे तो फिर बढ़ती जाएगी। कुव्वत जब पहले थोड़ी होगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, बढ़ते 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 बड़ी हो जाएगी। तो पहले स्टार्ट तो करो। ये है, ये नहीं है कि पहले से फर्ज कर लिया कि हिम्मत कमजोर है, लिहाजा हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए कि हम तो नहीं जा सकते, हम तो नहीं चल सकते। अरे हिम्मत तो करो। हाँ, बाजे बेचारे पैरों से होते हैं तो वो तो और ज्यादा जाम हो जाएंगे, थोड़ी हिम्मत करके चलेंगे तो काम पड़ेगा, चलते हो जाएंगे, दौड़ते हो जाएंगे। तो जी, तो इसी तरीके से फरमाया, फर्ज कर लिया हिम्मत कमजोर है, लिहाजा हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, बल्कि हिम्मत को इस्तेमाल करो, उसको जितना इस्तेमाल करोगे उसमें इतनी ही कुव्वत आएगी, उतनी ही कुव्वत आएगी। दुनिया की अक्सर चीजें ऐसी है कि उनको जितना इस्तेमाल करोगे तो इस्तेमाल के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ती जाती। देखो दुनिया की चीजें है ना, दुनिया की अक्सर चीजें ऐसी होती है कि उनको जितना इस्तेमाल करोगे तो इस्तेमाल के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ती जाती। मसलन गाड़ी है कि उसको जितना इस्तेमाल करोगे वो कमजोर होती चली जाएगी, आखिर में जाकर ठप हो जाएगी। मकान को इस्तेमाल करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता पुराना होता चला जाएगा, कपड़ा इस्तेमाल करने के नतीजे में पुराना होता जाएगा। लेकिन बास चीज अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि उनको जितना इस्तेमाल करोगे उनमें और ज्यादा ताकत आएगी। जैसे हाफिजा दिमाग, और ज्यादा हाफिजा कुव्वत हिफ्ज जो है वो बढ़ेगा। इस हाफिजे को जितना इस्तेमाल किया जाएगा उतनी ही कुव्वत आएगी। कोई ये ना सोचे कि अगर मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया तो फिर दूसरी चीजें याद करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, वो तो फुल हो जाएगा। ये वो मेमोरी नहीं है कि जिसमें 2 GB 3 GB बोले फुल हो गया। ये तो अल्लाह ताला ने एक अजीब बनाया है, जितना याद करोगे इतना याद होता जाएगा, हजारों किताबें हिफ्ज हो जाएगी। होता है ना, मेमोरी में लिमिट होती है कितना ही जाएगा उसमें। तो फरमाया, को ये ना सोचे कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, अगर मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया तो फिर दूसरी चीजें याद करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर और कुव्वत पैदा होगी। इसी तरह हिम्मत भी ऐसी चीज है कि उसको इंसान जितना इस्तेमाल करेगा उतनी कुव्वत पैदा होगी। हिम्मत भी ऐसी है कि उसको जितना इस्तेमाल करेगा उतनी कुव्वत पैदा होगी। इसी तरह हिम्मत भी ऐसी चीज है, अल्लाह ताला उसमें मजीद ताकत अता फरमा देंगे। अच्छा, अब एक और हजरत का मलफूज है, हुस्न पसंदी का इलाज। एक साहब ने हजरत वाला को लिखा, हजरत थानवी को लिखा, मुझ में इस कदर हुस्न पसंदी है, खूबसूरती बहुत पसंद है कि मामूली अशिया को भी निहायत करीना और खुश तरतीबी से रखता हूं। कि मामूली चीज भी होती है, खूबसूरत होती है, तो मैं उसको बहुत करीने से, बहुत अच्छी तरीके से रखता हूं, और हुस्ने सूरत की तरफ भी बेहद कशिश है, यानी जिसका चेहरा भी खूबसूरत हो तो मेरा मेरी उसकी तरफ नजर बहुत कशिश यानी खींची चली जाती है, यूं कहते हैं कि बेहद कशिश है। हजरत वाला का इसका जवाब अरबी में लिखा, उससे पता चला कि वो साहब आलिम होंगे। चुनांचे लिखा है, बाज़हु खैरन फशकुरु अलैहा व बाज़हु शर्रन फसबिरु अनहा, ऐ गज़ुल बसर हैसु अमर शारे बिल गज़ ولو بتكلف شديدا يحتمل زهوق الروح فإن الله غيور يشتد غيرته عن النظر إلى ما نهى الله أن ينظر إليه فالحذر حذر أن يغيظ المحبوب الأكبر। यानी ये अरबी में जवाब लिखा, यानी जो हालत आपने लिखी है उसका कुछ हिस्सा तो खैर है, कुछ हिस्सा तो खैर है, क्योंकि उन्होंने दो चीजें लिखी थी कि मेरे अंदर खूबसूरत यानी हुस्न पसंद, इसको कहते हैं अच्छा पसंद, तो उसमें चीजें भी होती है, ब्यूटी, तो उसमें चीजें भी होती है और उसमें नामहरम औरतें भी होती है, मर्द भी होते हैं, तो इस तरीके से तो फरमाया उस चीजों को भी रखने में उसका भी बड़ा शौकीन है, इसका भी बड़ा, तो इसलिए फरमाया कि इसका कुछ हिस्सा तो खैर है, वो ये कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छी चीज की तरफ रगबत अता फरमाई और उसका हक अदा करने की तौफीक होती है, तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, और कुछ हिस्सा शर है वो है हुस्ने सूरत, यानी चेहरे की खूबसूरती की तरफ मैलान, जिसका देखना जायज नहीं, तो उस पर सब्र करो और अपनी निगाह को नीची रखो, अगरचे उसमें इतनी तकलीफ हो कि जान निकलती महसूस होती हो। दोनों को कहा, मर्दों को भी औरतों के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी बड़ी गैरतमंद है और अल्लाह ताला को इस बात से बड़ी गैरत आती है कि बंदा ऐसी चीज को देखे जिसके देखने को अल्लाह ताला ने हराम किया है। जब तुम्हारे अंदर हुस्न पसंदी है और हुस्न अच्छा लगता है और हुस्न से मोहब्बत है, तो फिर हुस्न का जो कमाल है वो तो अल्लाह जल्ल शानु के पास है, यानी हुस्न आया किसके पास, अल्लाह के पास, तो फिर अल्लाह ताला से मोहब्बत करो ना, तो ये मखलूक से क्यों, मखलूक में अल्लाह ने हुस्न थोड़ा सा दिया और अल्लाह के पास बहुत ज्यादा है, तो अल्लाह ताला जल्ल शानु के पास है और वही महबूब अकबर है, फिर इन दुनिया के मामूली हुस्न के खातिर इस महबूब अकबर को नाराज करना कैसी गैरत की बात है, उससे बचो। जी तो ये एक हजरत थानवी, अब एक और जुमला हजरत थानवी का सुनो, एक साहब ने हजरत वाला को लिखा कि शैतान ये समझता है कि अल्लाह ताला अगर इन मरगूब सूरतों पर जायद शरी कब्जा दे दे तो उस वक्त क्या करोगे, शैतान ये समझता है कि अल्लाह ताला अगर इन मरगूब यानी जो पसंद है सूरते चेहरे उस पर जायद शरी कब्जा दे दे तो उस वक्त क्या करोगे, सो जायज कब्जा समझकर हज का ख्याल करो और हज हासिल करो, हराम कारी का ख्याल मत करो। हजरत वाला ने जवाब दिया, ये एक वसवसा आया दिल में, लिखा ये वसवसा है, तो हजरत वाला ने जवाब दिया, देखो कैसी कैसी चीजें लिखी है, पहले ही बता दिया कि अपने मुरब्बी और अपने शेख को जो दिल के वसाविस जो है वो लिख रहे हजरत, मिसाल में ही हमें पता चल जाता है कि कैसी कैसी चीजें लिखी। ख्याल का इलाज भी ख्याल है, देखो हजरत वाले जवाब लिखा ख्याल, क्योंकि ख्याल आया ना उसी को वसवसा कहते हैं, ख्याल का इलाज भी ख्याल है, यानी इस खराब ख्याल का इलाज भी एक दूसरा ख्याल है, वो ये कि इस वक्त एक ख्याल करो, उस वक्त एक ख्याल करो कि अगर इस औरत के शौहर को, उस वक्त एक ख्याल करो कि इस औरत के शोहर को उस ख्याल की इत्तला कर दो, ये ख्याल करो कि तुम्हारे ख्याल में जो जो वसवसा आया है, जो सोच आई है, जो थिंकिंग आई है, तुम उसकी थिंक, तुम्हारे अपनी थिंकिंग अगर उसके शोहर को इत्तला कर दो तो कितनी रुसवाई हो, उसको इत्तला कर दो कि मैं जो ख्याल कर रहा हूं ये कोई नाजायज ख्याल नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये ख्याल कर रहा हूं कि तू मर जाए, ये ख्याल कर रहा हूं कि तू मर जाए और तेरी बीवी के साथ मेरा जायज ताल्लुक कायम हो जाए तो उस वक्त कितनी रुसवाई होगी। अब ये देखो ख्याल, हालांकि शरी ताल्लुक मिलेगा, तो अल्लाह ताला तो बेकहे ही इस ख्याल पर मुत्तला है। अल्लाह ताला तो बगैर कहे ही इस ख्याल पर मुत्तला है, यानी जानता है। कितनी शर्म की बात है कि उस इरादे को देख रहे हैं। निज इस सिलसिले में उकूबत जहन्नम को मुस्तहजर करके, यानी जहन्नम के अजाब को सामने रख के उसमें लग जाए, या नफ्स से कहे कि जिस तरह तू मुझे दूसरी औरतों से यानी हज हासिल करने को कहता है, यानी ख्याल में ख्यालात में यानी लज्जत लेने को हज हासिल करने कहते हैं, हज हासिल करने को कहता है, इसी तरह अगर कोई शख्स मेरी बीवी से इस तरीके से यानी ख्यालात में अगर हज हासिल करे, यानी लज्जत हासिल करे, और मुझको इसका इल्म हो जाए तो मैं क्या करूंगा? जाहिर है कि मरने मारने पर तैयार हो जाऊंगा। इसी तरह क्या दूसरों को गैरत न होगी कि अगर उनको खबर हो जाए तो वो भी मुझे मार डाले और हर तरह की जरर पहुंचाने पर आमदा हो जाए, फिर जहन्नम का नक्शा पेश नजर कर ले। अलावा उसके शैतान की वो तावील ऐसी है कि कोई शख्स सचमुच किसी औरत से जीना करने लगे और ये सोच ले कि अगर इस पर जायज कुदरत हो तो इस तरह मुकारबत करूं और उसके हराम होने में कोई शुबा नहीं, यही हुक्म है जीना बिल कल्ब, इसको कहते हैं दिल से जीना। ये सब ख्यालात। तो वो एक आदमी ने उसका वसवसा लिखा, हजरत थानवी ने उसका जवाब लिखा। तो देखो ये शैतानी हरकतें होती है, तो ख्यालात के अंदर भी नहीं होना चाहिए, उसको भी हटाओ, यहीं से गाड़ी आगे जाती है। अब इसकी तफसीर सुनो, आगे वजाहत है। ये तो हजरत का जुमला था। हजरत वाला ने जवाब में जो फरमाया कि आदमी ये सोचे कि मेरी बीवी मेरी बहन मेरी बेटी के बारे में अगर दूसरा शख्स इस तरह की बात सोचे तो मुझे गैरत आएगी या नहीं, और मैं मरने मारने के लिए तैयार हो जाऊंगा या नहीं, तो जाहिर बात हो जाए। अल्लाह अकबर। अब देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जीना की इजाजत तलब करने वाला गुना क्या एक हुआ, तो देखो हुजूर से पास जा रहे, क्योंकि सहाबा की आदत थी हर चीज हुजूर से फरमा देते थे। ये बात हदीस से माखूज है, मजमाउ जवाइद में हदीस है कि एक साहब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके हर हुक्म पर अमल करने को तैयार हूं, लेकिन एक इजाजत मांगता हूं, वो ये कि मुझे जीना से सबर नहीं होता, यानी मैं रुक नहीं सकता, आप मुझे जीना की इजाजत दे दे। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये वो शख्स किस चीज की इजाजत तलब कर रहा है और किससे तलब कर रहा है। जी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब बुलाया। देखो डांटा नहीं, हमेशा मरीज को देखा करो। मरीज को डांटा नहीं, समझाने के लिए अंदाज देखो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो सहाबी का दिल इतना था कि बगैर पूछे काम नहीं करना। एक दूसरी इसमें बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटा नहीं बल्कि और ज्यादा करीब किया, तरबियत करने का अंदाज। तो फरमाया इसलिए कोई भी माँ बाप भी जब औलाद की तरबियत करे तो उसके अंदर भी ये उसूल है कि औलाद ने गलती करनी थी कर ली, और अगर गलती करने की इजाजत मांग रहा है तो उसको समझाओ, डांट के चुप मत करो। हो सकता है कोई गुनाह की इजाजत मांग रहा हो, अब बच्चे के अंदर फरमाबरदारी है, पूछकर माँ बाप से चलने की आदत है, और उसने माँ बाप से पूछ लिया, अब उसकी हकीकत तो माँ बाप ज्यादा जानते हैं, तो बच्चे को जरा सा बैठा कर अल्लाह के रसूल ने जैसा समझा ऐसा समझावे। अब वो सोचे अल्लाह ताला हमें ताकत देंगे समझाने की। और अगर कोई चीज हो गई है उससे, कोई ऐसी चीजें खिलाफ शरीयत, तो उस वक्त डांटो मत, क्योंकि अब वो मरीज है, अब उसको और प्यार से दूसरे रास्ते से समझाओ। या औलाद की तरबियत होती है, आज हमें आता नहीं है तरबियत करना, तो या तो अगर ऐसे कोई जुमला बोल दिया तो फौरन डांट दिया, तो बच्चा दूसरी मरतबा पूछेगा ही नहीं, चुपचाप कर ले। और अगर कर लिया है तो उसको इतना डांटते हैं कि फिर दोबारा उसके दिल में नफरत आ जाती है माँ बाप की तरफ से, बड़ों की तरफ से। तो इसलिए तरबियत के अंदर हम बहुत ज्यादा संभल के काम करें, क्योंकि जो भी बच्चा होता है वो बच्चा बच्चा ही होता है, उसको कुछ समझ नहीं होती, वो मासूम दिल के हिसाब से पूछ लेता है। तो अब देखो किसी फरमाया, अब क्या फरमाया, तो करीब बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया कि ये बताओ ये जिना तुम जिस औरत के साथ करना चाहते हो वो औरत किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की खाला होगी। अगर दूसरा कोई शख्स यही अमल तुम्हारी बहन के साथ करना चाहे तो क्या तुम पसंद करोगे? उसने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई तुम्हारी बेटी के साथ ये अमल करना चाहे तो तुम पसंद करोगे? उसने जवाब, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई तुम्हारी बीवी के साथ ये अमल करना चाहे तो तुम पसंद करोगे? या तुम्हारी खाला के साथ ये अमल करना चाहे तो क्या तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया कि जब दूसरों के इस अमल को तुम गवारा नहीं कर सकते और इस अमल के नतीजे में तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तो फिर वही काम तुम दूसरों की खवातीन के साथ करना चाहते हो, क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या वो लोग उसको गवारा कर लेंगे? वो साहब कहते हैं कि जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया था, उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि मुसलमान होने में सबसे बड़ी रुकावट मेरे लिए जिना को छोड़ना है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर मेरे दिल में इस अमल की ऐसी नफरत हो गई कि फिर इस अमल की तरफ रुझान ही नहीं हुआ। देखा, समझाने का अंदाज, और वो दर्द भी था, उसमें तवज्जो भी थी, वो सब कुछ था। इसलिए इसलिए गुस्से से बच्चों को तरबियत नहीं करनी है, बल्कि तवज्जो भी दो, दर्द भी दो, मोहब्बत भी दो, तो जिसकी वजह से बच्चे की काया पलट जाती, या कोई भी हो, अजनबी भी कोई हो, या साथियों को कभी लेकर जमात में भी चलते हैं तो उसमें भी साथियों से गलती हो जाती है, तो जिम्मेदार का काम होता है कि उसको मोहब्बत भी दे, तवज्जो भी दे, दर्द भी दे, तो बात करेंगे तो काम हो जाएगा। जी, अब इसमें क्या था, क्योंकि नजर का मसला आता है इसमें बहुत सारे, मैं भी जमात वालों के साथ भी बैठता हूं और वैसे भी आम लोगों के साथ भी बैठता हूं, तो बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि फिर हजरत हम फिर नजर को कैसे बचाएं, हमारा तो कारोबार ही ऐसा है जिसमें औरतें ही औरतें आती है, जैसे किसी का औरतों के कपड़े का कारोबार है या और कोई दूसरे ऐसे है जिसमें औरतें ही औरतें आएगी, तो उस वक्त हम क्या करें? ये बहुत सौ का सवाल था और सुनने वालों में बहुत सारा सवाल होगा, तो अभी इसी का बारे में आ रहा है कि जो खास चीजें जो औरतों की होती है उसको बेचने का। एक साहब ने पूछा कि बाज मकामात ऐसे होते हैं जहां मर्दों को औरतों से वास्ता पड़ता है, मसलन जनाना अशिया की खरीदो फरक, यानी ऐसी चीजें जिसमें औरतें इस्तेमाल करती है, उनकी खरीदो फरोख्त करने वाले दुकानदार, जैसे जेवरात के ताजिर, अभी हॉस्पिटल के फिर डॉक्टर, क्योंकि उनको भी औरतों से वास्ता पड़ता है, मुलाजिम वगैरह, तो ऐसे मौका पर बदनिगाही से बचने के तरीके पर रोशनी डाले तो बड़ी इनायत होगी। जी, तो ये ऐसे है, ये हजरात वाकियतन सबसे ज्यादा मुश्किल में घिरे रहते हैं, ये जो हजरात होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल में घिरे रहते हैं, क्योंकि हर वक्त खवातीन से साबका रहता है, जिसकी वजह से बचना आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को, जी जी जिसकी वजह से बचना आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जिस पर अमल करना नामुमकिन हो। देखो, तो अब उसके लिए देखो, अब जिन मर्दों को बकसरत खवातीन से साबका पड़ता है, उनके लिए सबसे पहला हुक्म यह है कि गज़े बसर से काम ले। जिनको अक्सर उन्हीं से साबका हो, तो क्या निगाहों को नीची करके काम ले। इसलिए कि जरूरी नहीं कि खवातीन से मामला करते वक्त उनकी तरफ नजर भी उठाए, तो जरूरी नहीं कि नजर उठाकर देखना, तो तुम्हें कोई चीज दिखानी है देनी है तो सब चीज करो, नजर उठाकर देखने की जरूरत नहीं, तुम लो दो हो गया काम, पर नजर उठाने की जरूरत नहीं, वक्त उनकी तरफ नजर भी। तो फरमाया इसलिए कि ये जरूरी नहीं कि खवातीन से मामला करते वक्त उनकी तरफ नजर भी उठाए। बहुत से लोगों को मैंने खुद देखा है कि वो ऐसे मौके पर काम करते हैं मगर उनकी निगाह नहीं उठती, काम कर रहे होते निगाह नहीं उठ, बल्कि निगाह नीची रहती है और काम करते रहते हैं, और अगर बिलफर्ज कहीं नजर उठाने की जरूरत पेश आ ही जाए तो उस नजर को लज्जत से महफूज रखो। अगर आ भी गई कोई बहुत ही मजबूरी की वजह से तो उसको लज्जत से महफूज रखे, अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाइए। और अगर नजर पड़ते वक्त कुछ इरादा लज्जत हो जाए, इरादे का लज्जत हो जाए, तो फौरन इस्तिगफार करे और तौबा कर ले। तो जी इसमें भी एहतियात करते जाए और फिर कहते हैं ना अल्लाह ताला से फिर मांगते भी जाए। हाँ लेकिन ये है कि नहीं नहीं ये तो चलता है और बिजनेस बदलने की, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मेरा बिजनेस तो यही है जिसमें मेरे साथ में औरतें आते रहती है मेरे दुकानों पर, तो मैं चाहता हूं अपना बिजनेस बदल दू। तो मैंने उनसे बताता हूं कि देखो बिजनेस बदलने से तुम गुनाहों से नहीं बचोगे, याद रखना। शरीयत में अगर ऐसा होता तो शरीयत ही की कोई हुक्म होता कि तुम ऐसे बिजनेस मत करो, तो उससे दुकान को और ऐसे काम को छोड़ने से तुम्हारा वो नहीं, ये भी शायद नफ्स का एक धोखा होता है कि तू अभी वक्त लगाया है, अब तेरे अंदर ये है, अब तेरे गुनाह से बचना है, चल इस दुकान को छोड़ दे। ये अब नफ्स दूसरे रास्ते से मार रहा है, पहले सीधा मार रहा था, अब जमात में वक्त लगा कर आया तो नफ्स ने रास्ता बदल दिया कि तेरा धंधा बदल दे। नहीं बल्कि मुफ्तियाने किराम के पास जाना चाहिए कि हजरत मेरा ये कारोबार है, मैं क्या करूं। तो वो आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से, ये हुदूद है, ये कुयूद है और शराइत है, आप इस तरीके से करो आपके लिए जायज है, तो वो सारा बताएंगे। लेकिन ये कि बिजनेस बदल देना और बगैर पूछे बगैर किसी के मशवरे से, तो क्या नुकसान होगा कि वो उसका बिजनेस बाप दादे का होता है या उसमें उसका चल पड़ा होता है, अब उसने एक हलाल तरीके का नफ्स ने धोखा देकर, हालांकि वो दूसरे गुनाह में डालेगा, क्या हो कि अब भीख मांग रहा है, अब कर्जा ले रहा है, अब बीवी से झगड़ा हो गया, क्या हुआ घर में खर्चा नहीं, तो क्या हुआ दूसरे गुनाहों में गया। तो ये साइट होती है उसकी, अब कर्जा लिया है, अब देने की ताकत नहीं है, अब घरों में झगड़े, औलाद परेशान, खुद परेशान, सब परेशान, तो क्या हुआ एक चीज गन। इसलिए ऐसी चीज अगर हो तो हमेशा ऐसे अच्छे ओलमा के पास बैठकर इस बात को समझ लिया जाए जैसे हजरत ने जवाब दिया, क्योंकि आम लोगों कहीं ये जवाब नहीं आया कि आप ऐसा बिजनेस छोड़ दो, है कहीं जवाब बताओ। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब का मुजाहदा देखो, हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह होम्योपैथिक डॉक्टर थे और उनका अपनी डिस्पेंसरी थी, दवाखाना था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को बताकर ये उन्होंने दवाखाना शुरू किया था, मतलब शुरू किया था। पहले ये वकालत करते थे, वकील थी। जब से हजरत से जुड़े हैं तो हजरत ने बताया होगा, तो जब मतलब शुरू किया यानी डॉक्टर डॉक्टरी शुरू की, तो वहां मर्द भी आने लगे और औरतें भी आने लगी। मर्द भी आने लगे, अब जाहिर बात है डॉक्टरों के पास तो मर्द भी आएंगे औरतें भी आएगी। तो अब हजरत फरमाते थे कि इब्तिदा में बाज औकात इलाज के लिए मैं घर पर भी चला जाता था, क्योंकि डॉक्टरों को जाना पड़ता है, कभी घर पे चला जाता कभी आते थे। एक मरतबा मुझे एक घर में इलाज के लिए बुलाया गया, वहां एक खातून बीमार थी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि उस खातून का लिबास भी पूरी तरह ढका हुआ नहीं, यानी सातिर नहीं है, ऐसे ऐसे ड्रेस होते हैं ना जो पहनने के बावजूद भी वो यानी ड्रेस नहीं है, तो फरमाया पूरा नहीं था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अल्लाह मैं किस मुसीबत में फंस गया, मैं किस मुसीबत में फंस गया, पता नहीं क्या होगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। बहरहाल अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। बाद में मैंने हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा, क्योंकि अब ये बात पेश आई, अब उनके शेख थे। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा कि हजरत मैं पहले वकालत करता था तो उसमें दूसरी किस्म का फितना था। देखो मैं पहले वकालत करता था तो फितना वहां भी था, तो दूसरी किस्म का फितना था, और इस डॉक्टरी में और किस्म का फितना, यहां भी फितना है, खवातीन से हर वक्त वास्ता पड़ता है, मैं क्या करूं। देखो उन्होंने हजरत से पूछा, तो जवाब में हजरत वाला ने दो जुमले लिखे, लिखा कि आप अल्लाह ताला से दुआ करके अपनी निगाह और दिल की हिफाजत कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ करके अपनी निगाह और दिल की हिफाजत कीजिए, मैं भी दुआ करता हूं। हजरत फरमाते हैं कि जब ये खत आया तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और फिर मतलब में बैठा। अब देखो, शेख की तवज्जो और शेख की इजाजत और शेख से हिदायत लेकर जब इन्होंने अमल किया, उसका नतीजा हुआ कि वो दिन है और आज का दिन है। मेरा दिल इस मामले में पत्थर हो गया। अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। हजरत वाला फरमाते हैं, मैंने निगाह की हिफाजत इस तरह की कि मैंने सोचा कि गज़े बसर, निगाहों का नीचा करना, और जब औरत सामने आ जाए तो निगाह नीची करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी आदत क्यों ना डाल ली जाए कि सामने चाहे मर्द हो या औरत, निगाह हमेशा नीची ही करके बात की जाए। देखो, आदत डालने के लिए, क्या मर्द हो या औरत, निगाह नीची करके बात की जाए। चुनाचे मैंने उसकी महीनों मशक की कि सामने मर्द हो या औरत, निगाह उठाकर देखा ही नहीं, निगाह उठाकर देखा ही नहीं। जब भी किसी से बात की, निगाह नीची करके बात की। उसका नतीजा ये हुआ कि अब मुझे पता ही नहीं चलता कि सामने मर्द है या औरत, बूढ़ा है या जवान। हमारा तो एक ही तरीका है कि निगाह नीची रहे। अल्लाह ताला की मदद और हिम्मत पर आती है। अल्लाह ताला की मदद हिम्मत पर आती है। बात दरअसल यह है कि जब आदमी इन चीजों में मुब्तला होता है तो उसको बचना बड़ा मुश्किल मालूम होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला इंसान को ऐसे हालात में मुब्तला फरमाते हैं तो फिर आसानी भी पैदा फरमाते हैं। ये नहीं हो सकता कि वो बंदे को बेयारो मददगार छोड़ दे। अल्लाह से मदद मांगो तो अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी। अगर इंसान बचने का कष्ट और इरादा करे और अल्लाह ताला से मदद चाहे और अपनी तरफ से थोड़ी बहुत हिम्मत का इस्तेमाल करे, तो मेरा तो उस पर ईमान है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, इंशा अल्लाह ताला। लेकिन अगर इंसान बचने का कष्ट ही न करे, इरादा ही न करे, फिक्र ही न करे, बल्कि गफलत में पड़ा रहे, ये बहाना बनाए रखे कि मैं तो इसी जगह में मुब्तला हूं कि बच ही नहीं सकता, हर वक्त औरतों से वास्ता है, औरतें हर वक्त सामने आती है, मैं क्या करूं, ये सब बेफिक्री के बहाने हैं, ये सब बेफिक्री के बहाने हैं। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से मदद का कोई वादा नहीं। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए और उस गुनाह से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये नजर की हिफाजत के बारे में सारी चीजें थी, तो और उसमें शेख को अपने हालात बताने के बारे में थी। तो याद रखे, आप जितने भी खवातीन सुन रही है, आप अपने हालात बताना चाहते हैं तो हमारी अहलिया यानी आपा का नंबर ले लिया जाए और उनके उनको अपना पूरे पूरे हालात बता दें, और वो हमें बताएंगे और उन्हीं को जवाब बताया जाएगा और वहां से आपको मिलता रहेगा, ताकि आपके लिए आसानी। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमें क्या करे, किस तरीके से करे, तो एक आसान रास्ता है। तो डायरेक्ट हमसे नहीं मिलना है, बल्कि डायरेक्ट उनसे मैसेज में, बात से, जो भी करना है, तो पूरे हालात बताएंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ फायदा होगा। ठीक है, थोड़ी देर मुराकबा करते हैं। आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले और ये तस्वुर करे कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।